1985 का प्रसंग मैं आपको सुनाती हूँ। प्रिय भक्तजन, आज 9 जुलाई 2020 का दिन है, आप सबके लिए मंगलमय हो। अगस्त के महीने में मौसम सुहाना है, दिन के समय थोड़ी गर्मी होती है, चारों ओर पहाड़ियों पर हरियाली छाई हुई है। श्री महाराज जी कभी कुटिया से बाहर जाते हैं, अस्वस्थ जैसे लगते हैं, कभी भूख नहीं लगती तो कभी दस्त हो जाते हैं। श्री महाराज जी को इस भूभाग में आए लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। इन वर्षों में उन्होंने कभी किसी भक्त से अपनी व्यक्तिगत सेवा नहीं करवाई। क्षण रात दिन मेहनत करके इस स्थान को तीर्थ स्थल में परिवर्तित कर दिया। श्री महाराज जी का तप बल, परोपकारी भाव तथा प्राणी मात्र से प्रेम ही इस तीर्थ स्थल की नींव है। स्वास्थ्य बिगड़ गया है, परंतु इनका मन या तो सष्टम भूमि में चला जाता है या लोक कल्याण। वैष्णव तो एक बालक की भांति माँ पर ही निर्भर रहते हैं। राम नाम लिख लिख कर गोलियाँ बनाई गई हैं। आजकल पुलिस लाइन से भी कुछ माताएं मेरे साथ बैठकर राम नाम लिखती हैं और गोलियाँ भी बनाती हैं। दिन भर राम नाम की महिमा का गान होता रहता है। आजकल अस्पताल दीवार की दूसरी छत का स्लैब डाला जाने वाला है, इसलिए श्री महाराज का पूरा ध्यान स्लैब की ओर है। श्री विजय सूद इंजीनियर की ये जिम्मेदारी है। महाराज जी ने ये जिम्मेदारी मंदिर के निर्माण कार्य की 1965 से जब विजय सूद आए कुल्लू में, तभी से उनको सौंप दी थी, इसलिए वह प्रतिदिन आ जाते हैं। श्री महाराज जी उन्हें बड़े प्यार से विजया कहकर पुकारते हैं और प्यार से अपने पास बिठाकर क्या उसे खिलाते पिलाते हैं। उनका अनूठा अनुकम से भक्तों को प्रभु का प्यार देता है, जिसे पाकर भक्त धन्य हो जाते हैं। उन दिनों कुल्लू मंदिर सड़क पर हनोगी गांव में सड़क के किनारे स्थित हनोगी माता के मंदिर में, जहां धर्मशाला का निर्माण कार्य भी आरंभ हुआ है, एक दुर्घटना घट गई। सुचेत भारती नाम के एक साधु जो 40-42 वर्ष की आयु के होंगे, जो अखाड़ा बाजार में पीपल के चबूतरे पर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा किया करते थे, मंदिर जाते बाद रात्रि रोगी माता की धर्मशाला में ठहरा था। वहां रात को पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टाने आ गई, जिससे धर्मशाला की छत टूट गई और वह साधु निखिल भारती तथा अन्य दो भक्त दबकर मौत के शिकार हो गए। निखिल भारती का शव 2 दिन पश्चात अखाड़ा बाजार में लाया गया और उसके भक्तों ने उसका दाह संस्कार किया। निखिल भारती शैव मत का अनुयायी बाबा था। उसे श्री महाराज की समन्वयात्मक भक्ति की निंदा करने में बड़ा आनंद आता था। एक बार उसने क्रोध में आकर श्री महाराज जी को बुला कर और उनके पास आकर भी उनको बहुत बुरा भला कहा था। जब से वह पीपल के चबूतरे पर आया था, प्रायः श्री महाराज का विरोध ही करता था। यहाँ तक कि यदि श्री महाराज की भक्त महिलाएं वहाँ मंदिर में जाकर, मतलब पीपल के मंदिर में जाकर कभी जल या रेस गाड़ी मांगती तो वह क्रोध से कह जाता और वहाँ ऊपर जाओ ना वैष्णो माता मंदिर में। और कई बार उसने साधुओं के जत्थे के जत्थे ये कहकर महादेवी तीर्थ में भेजे यहाँ और कहा, वहाँ जाओ, वहाँ एक माई रहती है, तुम्हारा प्रबंध हो जाएगा, रात्रि निवास भी मिलेगा। अतः 1974 में जब से मैं मंदिर आई, उन्हें इस समस्या मतलब मुझे इस समस्या का सामना करना पड़ता था। उन दिनों महादेवी तीर्थ में लंगर चालू नहीं हुआ था, अभी रात्रि निवास ही बना था, वो भी पूरा नहीं अधूरा था। भोजन तो मैं स्वयं पकाकर साधुओं को खिला देती थी, परंतु जब रात्रि निवास के लिए इनकार करती तो साधु बुरी तरह पेश आते। कई बार साधुओं ने बताया कि उन्हें अखाड़ा बाजार के पीपल पे चबूतरे से स्वीकृत भारती ने विशेष रूप से भेजा है, अन्यथा वे कहीं और ठहर जाते। अब धीरे धीरे लंगर का प्रबंध हो गया और साधुओं को रात्रि निवास भी बना दिया गया, जिनसे समस्या का समाधान हो गया। श्री महाराज जी कहा करते थे, हमें ना धन का, ना दोस्त का, ना विद्या का, ना तप का, ना निवक्ति का अभिमान करना चाहिए। फलदार वृक्ष सदा झुक कर ही रहता है। 24 अगस्त 1985 की एक और घटना भी उल्लेखनीय है। लगभग 4 बजे एक बंगाली परिवार शांति में से उनकी धर्मपत्नी युथिका और बेटा दीपाकर मंदिर में आए। ये लोग 3 दिन पूर्व भी यहाँ आए थे। उसमें श्री जगदीश सूर्य ने मेरे से मिलाया था और भंडारे में भोजन खिलाया था। ये बंगाली परिवार जब सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहा था तो मैं गुफा के पास खड़ी थी। श्री शांति में सेन ने हंसते हुए कहा, पहचाना हमें? हम फिर आगे। इतना सुनते ही मुझे उनका पिछला आगमन याद आ गया। दर्शन पश्चात मैं उन्हें भीतर ले गई। श्री महाराज जी समाधि में थे, इसलिए उन्होंने चरणों को ही प्रणाम किया। मैंने उन्हें कमरे में बिठाया, पनीर चने तथा दूध दिया। उन्होंने तब बताया कि रोगी में रास्ता बंद हो जाने से वे फिर लौट आए हैं और सोचा कि चलो मंदिर में जाते हैं और भी कुछ देर बैठकर चले गए। जाती बार वे अपना कलकत्ता का पता भी दे गए। आज 26 अगस्त रविवार है। स्लैब के लिए सब तैयारी हो चुकी है। इंजीनियर विजय सूद भी आ गए हैं। कार्य आरंभ हो गया है, परंतु 9 बजे बूंदाबांदी आरंभ हो गई। सामने मनाली की ओर पहाड़ी पर जोर की वर्षा हो रही है। सब घबरा गए। तभी श्री महाराज जी कुटिया से बाहर आए और द्वार के पास बैठ गए। वर्षा धीरे धीरे थम गई। 5:30 बजे कार्य पूरा हुआ तो श्री महाराज जी कुटिया में चले गए और विजय सूजी से कह गए, रात का प्रबंध कर लेना, कहीं वर्षा न आए। रात्रि 8 बजे विजय जी पूरा प्रबंध करके चले गए। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी तथा बालक बालिका दोनों थे। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण सूद ने सारा दिन रसोई संभाली और सबको भोजन बना बना कर खिलाया। अब श्री महाराज जी अपने स्थान में चले गए। रात्रि 10 बजे श्री महाराज जी ने आकर कहा कि विजय बाबू कहाँ है, तो मैंने बताया वे सारा प्रबंध करके 8 बजे चले गए। आपको उसमें गहरी नींद आई थी, तो श्री महाराज जी बोले, कहाँ बाबा कोई सोया था? बाबा तो ब्रह्म देवता के पास गया था उसे ये कहने के लिए कि आज रात को वर्षा नहीं होनी चाहिए। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। श्री महाराज जी का हाव भाव भी ऐसा ही लगता था मानो कहीं दूर से आए हो। श्री महाराज समाधि अवस्था में शरीर के यहाँ रहते हुए भी देवलोक में जाते थे। वो जाकर आ जाते थे। ये अष्ट सिद्धि प्राप्त महापुरुष ही नहीं, ये तो स्वयं भगवान के अंश अवतार थे, परंतु उन्होंने कभी किसी प्रकार की सिद्धि का प्रयोग करके किसी प्रकार का चमत्कार नहीं दिखाया, क्योंकि वे भगवान के नाम को ही मानते थे, उन्हीं का गुणगान करते थे। वे स्वयं अपने नाम और यश से बहुत ऊपर उठ चुके थे। वे तो निष्काम कर्म योग ज्ञान तथा भक्ति का समन्वय करके जन साधारण के रास्ते को समतल बना गए। उस दिन आरंभ में हल्की सी वर्षा होने के कारण तीखी धूप की गर्मी से बचाव हो गया और सब कार्य करने वालों ने माँ की जय बोलकर कहा कि माँ ने हम पर विशेष कृपा की। श्री महाराज जी संसारिक लोगों का पाप ताप कर्म करते रहते थे। जब कभी वे सहज अवस्था में होते तो लोग उन्हें अपने अपने दुख सुनाते हैं और उनके दुख सुनकर महाराज जी गर्भीभूत हो जाते हैं और उन्हें कई प्रकार की युक्तियां बताते हैं ताकि वे संसार की अग्नि में झुलस ना जाए। वे कभी नहीं झुंझलाते बल्कि प्रेम पूर्वक सबके दुख हर लेते हैं। उन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गीता माँ।